दो दिन बाद, रावत मेंशन। समर्थ और त्रिशा की शादी के लिए पूरे रावत मेंशन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ लाइट स्वगी हुई थी। अभी शाम के 7 बज रहे थे, तो वो लाइट इतनी ज्यादा चमकती हुई तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी काफी खूबसूरत लग रही थी। अंदर फूलों से सजावट की गई थी। दीक्षांत सब मेहमानों को संभालने में बिजी था, तो वहीं माही और जानवी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। उस दिन के बाद माही और जानवी के बीच बहुत कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि अब माही को लग रहा था जानवी की वजह से ही दीक्षांत ने उस पर गुस्सा नहीं किया है। इसलिए अब माही जानवी से नफरत करने की बजाय अच्छी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि इससे पहले उसे लग रहा था जानवी ही सबको भड़का रही है उसके खिलाफ। जानवी ने इस वक्त एक लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था और ऊपर बिना स्लीव्स वाला ब्लाउज। उसके साथ एक रेड हैवी दुपट्टा था, जिसे वो कमर में टक करते हुए माही से पूछ रही थी कि उसे किस तरीके से लगाया जाए ताकि वो ज्यादा अच्छा लगे। देखना माही, कैसे लगाऊं इसे? ये कंधे पर ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ऐसे कमर में टक करके लगाऊं? माही ने एक नज़र जानवी को देखकर मुस्कुराकर अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल निकाला और उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, तुम कैसे भी लगाओ, खूबसूरत ही लगोगी। वैसे ये कमर की साइड वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर जानवी हल्के से मुस्कुराई और जैसे माही ने बताया वैसे ही अपना दुपट्टा लगा लिया। माही ने इस वक्त एक ग्रीन कलर की फुल स्लीव वाली अनारकली पहन रखी थी, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा थी, जिससे वो बिल्कुल किसी गाउन की तरह लग रही थी, पर गाउन की जितनी हैवी नहीं थी। उसके साथ एक वाइट दुपट्टा था, जिस पर मिरर से फ्लावर्स बने हुए थे और किनारे पर छोटे छोटे वाइट मोतियों की लड़ी बनी हुई थी। उसने उसे दुपट्टे को गले में डालते हुए एक नज़र खुद को देखा। उसके बाल खुले हुए थे और उसने कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे, जिनकी चेन को उसने बालों में पिन कर रखा था। उसने माथे पर छोटी सी बिंदी लगाते हुए कहा, मेरा हो गया है, अब चल तुझे ज्वेलरी पहना देती हूँ। काफी दिनों बाद माही का पहला वाला बिहेवियर देखकर जानवी बेहद खुश थी। वो जल्दी से चेयर पर बैठते हुए बोली, हाँ वैसे भी लेट हो रहा है, हमें थोड़ा मेकअप भी करना है। दोनों सहेलियां आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को तैयार कर रही थीं, तो वहीं उनके बगल वाले कमरे में त्रिशा को दो मेकअप आर्टिस्ट मिलकर तैयार कर रही थीं। त्रिशा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। आखिरकार वो जो चाहती थी वो सब कुछ हो रहा था। उसे इस बात का फिलहाल थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि वो अपने साथ कितना गलत कर रही है। जिस इंसान से वो प्यार नहीं करती है उसके साथ शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधने जा रही थी वो, और उसे लग रहा था उसने जंग जीत ली है रावत मेंशन में रहने के लिए। जैसे रावत मेंशन में रहने से ही उसे अमर मिल जाएगा, पर सच्चाई इससे कोसों दूर थी। अमर और जानवी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। अब त्रिशा अपने साथ साथ समर्थ की जिंदगी भी खराब कर रही थी, क्योंकि समर्थ सच में त्रिशा को पसंद करता था। अब अगर शादी हो जाएगी और उसके बावजूद त्रिशा समर्थ को वो प्यार नहीं देगी जो वो डिजर्व करता है, तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद ही है। समर्थ अपने कमरे में था और उसके पास ही अमर बैठा था। अमर उसके सर पर साफा बांधते हुए उससे बातें कर रहा था। समर्थ, तुझे जरूर कुछ गलतफहमी है। जैसे तू सोच रहा है त्रिशा वैसी नहीं है, वो बस भटकी हुई है, और मैं कल ही इन्वेस्टिगेट किया है कि इन सब के पीछे एक्चुअल में हाथ किसका है, तो इसमें त्रिशा की कोई गलती नहीं है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि वो जो बेबी था वो भी किसी ने उसे बेहोश करके उसके शरीर में स्पर्म डाल दिया था, बाकी वो किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई है, वो कहीं से भी धोखेबाज तो बिल्कुल नहीं है। समर्थ हैरानी से अमर को देख रहा था। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माना भाई, वो इन सब चीजों में धोखेबाज नहीं है, लेकिन फिलहाल वो जो कर रही है कि सब बहुत बड़ा धोखा है। आप मेरी बातें अब नहीं समझ रहे हैं, पर असलियत यही है कि वो अभी आपको पसंद करती है, और शायद ये सब इस घर में आने के बाद हुआ है। उसने आपको जैसे ही मिस ब्यूटीफुल की केयर करते हुए देखा तो उसे लगा उसके हाथ से बहुत अच्छी चॉइस छूट गई है, और जो उसका होने वाला था वो मिस ब्यूटीफुल को मिल गया है। कहने को इसे एक अट्रैक्शन बोल सकते हैं, या फिर उसने इतना कहा ही था कि अमर ने उसे चुप करवाते हुए आगे कहा, या फिर उसे फिलहाल केयर की जरूरत है जो उसे मिल नहीं रही है, तो उसे जो सामने देखा वो अब अपने पास चाहिए। तुम इसे एक साइकोलॉजी बीमारी बोल सकते हो, पर इसका इलाज एक ही है कि उसे कोई प्यार करे, उसे केयर दे, जिससे उसे समझ आए कि ये केयर सबके हिस्से में आती है, किसी एक लकी इंसान के हिस्से में नहीं। और मुझे पता है मेरा भाई काफी स्ट्रांग है, तो वो इन सब चीजों को झेल लेगा और हारेगा नहीं। समर्थ की आंखें भर आई थी। उसने रूठे हुए अंदाज कहा, भाई आप मुझे कुएं में धक्का दे रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं मारूंगा नहीं, ये कौन सी बात हुई? अमर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि मैं कमर पर तुम्हारी एक रस्सी बांध रखी है, तुम जैसे ही कुएं में कूदोगे मैं उस रस्सी की पकड़ टाइट कर दूंगा ताकि तुम मरो नहीं, समझ गए? अभी अपने आंसू पोंछो, शादी के दिन लड़की रोती है अपनी विदाई पर, लड़के नहीं तो कहीं नहीं जा रहा है, तो कहीं जाने वाला है, समझा? अब मैं कल्याण सिंह के पास जाकर आता हूँ, रोना नहीं बिल्कुल भी। टू बी कंटिन्यूड।